फिर अब आगे से जिक्र शुरू होता है। वो एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, समझ लीजिए अभी, ताकि फिर मैं गो में पढ़ दूं तो आपको समझ आती रहे। नबी सल्लम की जब शादी हजरत खदीजा से हुई तो उन्होंने एक शख्स गुलाम की सूरत में उनको तोहफे में दिया, जिनका नाम जैद था। खानदानी गुलाम नहीं थे, किडनैप किड थे, लॉस्ट चाइल्ड था, लोगों ने पकड़ के गुलाम बना दिया। हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी को गिफ्ट में दिया। उस दौर में लोग गुलाम ऐसे गिफ्ट में देते थे जैसे आज के दौर में कोई मशीनें देते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको आजाद किया और कहा कि आप आज से तुम मेरे बेटे हो। लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारने लगे, बड़ी अच्छी बात है। कुछ अरसे के बाद जैद के पेरेंट्स आ गए, पता चला, ढूंढते ढांढते आ गए, चचा बाप दादा, बड़े खुश हुए, मिले। अल्लाह के नबी से कहा, कहा ठीक है, इनसे पूछ लीजिए, ले जाइए आपका बच्चा, मैं नहीं रोकता। तो जैद को कहा कि आपकी चॉइस, अब जिसको मर्जी चूज करे। तो बाप, सगे, चचा, दादा, जो भी रिश्तेदार थे उनको छोड़कर उन्होंने नबी सल्लम को चूज किया कि मुझे ये गुलामी पसंद है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी का साथ पाकर कौन छोड़े, इतना प्यारा साथ था। खैर, जैद फिर आपके साथ रहे, उसके बाद ही फिर आपने उनको आजाद किया और जैद बिन मोहम्मद का हुआ क्या, जब वो जवान हुए तो अल्लाह के नबी ने उनकी शादी अपनी फूफीजाद बहन हजरत जैनब से करनी चाहिए। जैनब खानदानी औरत थी, जैसे आप कह लीजिए कि जैद आप लगा लीजिए जैसे मुलाजिम के बच्चे थे, या थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड लो था जैसे उस दौर में गुलामी का होता था। जैनब एक आला खानदान की औरत थी जिनको अपने हसब नसब पे फख्र था और अरबों में ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। हजरत जैनब और उनके जो घर वाले थे वो दिल से खुश नहीं थे इस रिश्ते पे, लेकिन अल्लाह के नबी ने प्रपोज किया था तो मना ना कर सके, लिहाजा हजरत जैनब के साथ जैद का निकाह हो गया। हजरत जैनब के दिल से बात नहीं गई, वो कंपेयर किया करती थी कि मेरे शोहर ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। जैद बेचारे पूरी भी कोशिश करते रहे लेकिन वो जैनब का दिल ना जमा। बिल आखिर फिर उनका फैसला होने वाला हुआ, तलाक हुई जब, तो अल्लाह ने वही के जरिए से नबी को ये सारी बातें बता दी कि जैद जब तलाक देंगे तो आपको जैनब से निकाह करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि उस दौर की रिवाज क्या था कि मुंह बोले बेटे अडॉप्टेड सन को रियल सन की तरह सोचते थे, और नतीजा क्या था कि उसकी बीवी को एज अ बहू या डॉटर इन लॉ समझते। तो उस लिहाज से जैनब जो थी आपकी बहू बन चुकी थी। अल्लाह ताला ये रस्म नबी के जरिए तोड़वाना चाहते थे। देखिए, नबी से जो सबसे मुश्किल काम अल्लाह ताला ने लिया है ना, वो ये रस्मों को तोड़वाया है। ये कुम फानजिर का काम इतना मुश्किल ना होता अगर बीच में खानदानी रस्में रिवाज नहीं थे। अब आप अपने ऊपर लीजिए, आज के एक मौलवी साहब दीनदार जो लोगों को दीन देते हैं, उनकी इज्जत भी है, लोग उनको दरसों में बुलाते हैं, जुमे के खुतबे देते हैं, कल खबर मिली कि उन्होंने अपनी बहू से शादी कर ली, तो कितनी बड़ी क्यामत नहीं टूटेगी। अल्लाह के नबी पर यह क्यामत टूटने वाली थी और आप नहीं चाहते थे ऐसा हो। आपकी ख्वाहिश थी कि ऐसा कभी ना हो। आप जरा सुनिएगा इन सारी बातों को। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं कि जब अल्लाह और इसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो इसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो तो खुली गुमराही में पड़ गया। यानी भी याद करो वो मौका जबकि तुम इस शख्स से कह रहे थे, उस शख्स से मुराद जैद है, कि जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो। इस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे। किस बात का डर था? कि लोग बातें करेंगे मुझे कि मैंने अपनी बहू से शादी कर ली। हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता लिख लें, पूरे कुरान में वाहिद एक शख्स का नाम है सहाबी और वो जैद है, किसी का नाम नहीं है, इशारे जिक्र तो बहुत सारे होंगे, तो ये जैद की एक खूबी है। अल्लाह ताला ने कहा जब जैद उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके, यानी शोहर बीवी का ताल्लुक कायम हुआ, तो हमने इस मुतल्लिका औरत का निकाह आपसे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही था। या नोट कीजिए कि ये निकाह जमीन पे नहीं हुआ था, जवज ना कहा। अल्लाह ने आसमान पे हजरत जैनब का निकाह कराया था। जब अजवाज मुतहरात में शामिल हुई तो फख्र किया करती थी दूसरी अजवाज में कि देखिए आपके निकाह तो जमीन पे हुए, मेरा निकाह आसमान पे हुआ। इसी पे आज लोग चूचा करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में लिख दिया हमने इसका निकाह कराया, तुम्हें बोलने की इसमें क्या जरूरत थी। तो खैर, वो हो गया, अल्लाह ताला ने अपना काम किया। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने इनके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत इन सब अंबिया के मामले में रही जो पहले गुजर चुके, और अल्लाह का हुक्म कतई तयशुदा फैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत इन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और मुहासबे के लिए तो सिर्फ अल्लाह ही काफी है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ने नबी के ना चाहने के बावजूद उनसे ये काम ले लिया, और ये काम आज अगर आपसे अल्लाह ने ले लिया किसी रस्म के टूटने का जिसको हमने पूरा मजहब और दीन बना लिया, तो याद रखिए ये बहुत बड़ी नेकी होगी। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को रस्मों और जिन मुख्तलिफ किस्म की चीजों में हम दो चार देखते हैं उसके लिए भी इतनी ही जुरत की जरूरत है कि जिसको अल्लाह से डरना हो। मसलन अगर आप अपने बेटे की शादी सादगी से करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी को जहेज नहीं देना चाहते, आप शादी के अंदर सेग्रीगेशन चाहते हैं, आप नहीं चाहते मिक्स गैदरिंग को, तो इसके लिए यही बात याद रखिये कि वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु। लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक खत्म कर देता है। वही लोग ये काम आज भी करेंगे जिनको अल्लाह से ही डर होगा, दूसरों से डर नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए कि एक और मसला था और वो क्या था, हजरत जैद को अल्लाह का नबी का बेटा बनाने वाली बात। तो आयत 40 में कहा गया, मा काना मोहम्मद नाबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीजीन है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये है अल्लाह के नबी की ऑनर जो बाकी नबियों को हासिल ना हो सकी कि आप खातिम, खातिम कहते हैं मोहर को, जैसे स्टैंप होती है ना, एक होती है स्टैंप और एक होती है सील। लफ्ज खातिम के आगे लिख लीजिए सील ऑफ द प्रॉफिट। आप एक खत लिखें और उसके बाद उसके बाहर सील लगा दें तो अब खत के अंदर कुछ नहीं जाएगा और जो अंदर है वो बाहर नहीं आएगा। लिहाजा खातमुन नबीजीन का यही माना सहाबा ने समझा। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद 30 झूठे कज्जाब पैदा होंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे, और इसी तरह के वाक्य हो चुके। मुसैलमा कज्जाब ने अल्लाह के नबी की जिंदगी में झूठी नबूवत का दावा कर दिया था, फिर अल्लाह के नबी के बाद वो मरवाया भी गया। इसी तरह से एक अस्वद अंसी था, सुजा नाम की एक औरत थी, इन्होंने कुछ मुख्तलिफ अदवार में ये काम कर दिए। आज के दौर में भी एक ऐसा ही फितना मौजूद है जो खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो कहते हैं खातबुन नबी, इनसे मुराद सील ऑफ द प्रॉफिट नहीं है, स्टैंप ऑफ द प्रॉफिट है। अब सील और स्टैंप का फर्क आप जानते हैं, एक मोहर लेके घूम रहे हैं जहां दिल चाह उसको लगा दिया। तो प्रॉफिट वो कहते हैं कि वो हमारे एक बड़े लीडर को अपना नाम दे चुके, हालांकि आप देखिए कि 100 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अब दोबारा दुनिया में आने की। मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, उम्मत मोहम्मदिया में आएंगे, अल्लाह के नबी के पहलू में दफन होंगे, अपनी शादी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ अपने एक मजहबी लीडर के नाम, जिसका नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है, जिनको नहीं पता वो खुद जान लें, लेकिन उन्होंने आज नबूवत का दावा भी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो मसीह अब नहीं आएंगे, वो मसीले मसीह की सूरत में आ चुके, लुधियाना में आए थे और अब उनका इंतकाल तक हो चुका और आज उन्हीं के पैरोकारों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, जिल्ली नबी बना लिया अपने आप को। और आज याद रखिए कि हम रहते वेस्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फितना इसी मसलक की वजह से वेस्ट वाले या नॉन मुस्लिम जिसको सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं मुसलमानों में, उसी सोच के हामिल इनको, क्योंकि वो सारे उनके अकायद के मुताबिक हैं। मजीद इल्म लें, बात इशारतन इसलिए कह रही हूँ कि आज ऐसे कई सवाल हमारे सामने आते हैं। बच्चियां बच्चे शादियां कर लेते हैं, स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में थे, साथ रहते पढ़ते थे, नतीजा क्या होता था कि मोहब्बत होगी, बाद में पता चला लड़के के अकायद तो ऐसे वैसे। तो याद रखिए कि फिर आप किसी नॉन मुस्लिम से भी शादी कर सकते हैं, जिसको अशहद अल्लाह इल्लल्लाह और अशहद अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर शक है, तो उसकी बाकी चीजों को आप अच्छा कैसे कह सकते हैं। इखलाक तो गैरों का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहरहाल ये झूठी नबूवत के दावे थे अल्लाह, और उनके अपने रेफरेंस मौजूद है, आप जाके नायतों की तफसीर सुन लीजिए सीरुल जन्ना में, पूरे पूरे उनके रेफरेंस दे के बताया गया कि उन्होंने अपने आप को कहा कि इब्ने मरियम को छोड़ दो, मैं हकीकतन मैं ही मसीले मसीह हूँ, क्योंकि गुलाम अहमद की सूरत में वो आ चुके और अब जो भी हमें नहीं मानता वो काफिर है। और इसी तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्ला खान वो भी उसी सोचते थे, कायद अजम का जनाजा उन्होंने नहीं पढ़ा था और वो कहते थे कि या तो मुझे काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर समझ लो या फिर मुझे काफिर मुल्क उसका अपोजिट समझ लो, कि एक मुसलमान मुल्क का काफिर वजीर हूँ, वो अपने आप को इसी सोच के साथ रखते थे। तो याद रखिए कि जब तक हम इल्म नहीं हासिल करें, और इस वक्त तो इतनी जरूरत है अपनी नस्लों को इस्लाम के बेसिक बिलीफ बता के जाएं, वरना ये जो सोच रखने वाले इनका इखलाक इतना अच्छा, तबलीग इनकी इतनी, इतना स्पेंड करते हैं 25% ऑफ अपनी इनकम का ये अपने जमात खाने को देते हैं, हमें तो 2.5 ज़कात भी चुभती है ना, हम इल्म पे कितना लगाना चाहते हैं और ये इतना लगाते हैं फ्री खाने खिलाने। और इस मजहब का मैंने एक पेपर पढ़ के सुनाया था RKP की क्लास में, मुझे याद आ रहा है इन्हीं के किसी से मुझे मिला था, नमाजों की अब जरूरत नहीं, वो माफ हो चुकी, हज की जरूरत नहीं, सिर्फ इमाम साहब को देख लीजिएगा आपका हज हो जाएगा और स्लीवलेस पहनी कोई बात नहीं, पर्दा दिल का होता है, पूरी इतनी लंबी लिस्टें थी। हमारी एक स्टूडेंट थी तो वो इस सोच से थी, तो बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो आई, उन्होंने मुझे उनका जुमला आज तक नहीं भूला इतने साल में कि उस्ताजा बड़ा ही मन पे सब्र करने वाला होगा जब वो सोच छोड़कर कुरान सुन्नत पे आएगा, उसमें तो रंगीनी इतनी है जो, और लीगली जायज है आप बॉयफ्रेंडशिप बने गर्लफ्रेंडशिप रखें, सिर्फ आप हर जुमे को आके आके जमात खाने को धो दें, साफ करें, पैसा दें, खाएं, लंगर खोले, दैट्स इट। वो कहते हैं ये सब करते हैं आपके गुनाह माफ है। तो उन्होंने उन्हीं का उसी जमात खाने का छपा हुआ एक पेपर मुझे दिया था, जो मैंने क्लास में एज इट इज पढ़ दिया था, कि वो खुद कह रहे हैं रोजे ना रखो, नमाज ना पढ़ो, कौन है जो वो ना जाए और उसके बाद जाना आपने फिर उसी जन्नत में जिसमें अबू बकर जा रहे हैं, तो सबको वही रास्ता आसान लगेगा ना। तो हमेशा इल्म सीखिए। देखिए इल्म से बड़ी दौलत दुनिया की हो ही नहीं सकती, और आज अगर हम इससे महरूम हैं तो हमारी कोठियां बंगले किसी काम के नहीं। ये सिर्फ एक महरूमी की बात है। और आज अगर इस इल्म को हम मुसलमानों ने ना लिया, गैरों ने इसकी बुनियाद पे आज मुसलमानों को तोड़वा दिया। वो स्पॉन्सर करते, मैं ऐसे ऐसे मुल्क जानती हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के जो उस फिरकों को, सो जिसमें आने वाले शायद चंद सौ लोग भी नहीं, कौन फंडिंग करता है? कहते वो गवर्नमेंट करती है। उन्होंने ये बनवा के दिए मस्जिद, क्या आप बनाए इसको मस्जिद के तौर पे यूज करें, जो भी करें, कि जहां कोई मुसलमान चाहे सोच भी नहीं सकता इतनी महंगी जमीन लेकर इतना बनाए। तो वो तो ऐसे मुसलमानों को प्रमोट करेंगे ना कि जिसमें ख्वाहिशें भी और जिसमें तमन्नाएं भी पूरी हों और नाम का इस्लाम भी रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे। फिर फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और इसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल कर लाए। वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है, जिस रोज वो उससे मिलेंगे इनके इस्तकबाल सलाम से होगा और इनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत अजर फराहम कर रखा। ए नबी हमने आपको बनाकर भेजा, हाईलाइट कीजिए बड़ी प्यारी सिफात है। कोई आपसे पूछे कि आपके नबी का क्या काम था, क्या मुकाम है, तो ये बड़ी बेहतरीन आयात है। क्या थे आप? इन नरसलना के शाहिद मुबशिरों व नज़ीरों व दाइन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा। ए नबी हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, बशारते देने वाला और डराने वाला बनाकर, और अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। आज हमने इस चिराग से दूरी की वजह से अपने मुस्तकबिल को तारीख किया हुआ। अल्लाह के नबी हिदायत का चिराग भी थे, रोशनी का चिराग थे, तरक्की का चिराग थे। आपकी सारी जिंदगी लोगों को खुशखबरियां और डरावे देके गुजरी, दावा आपकी जिंदगी का मिशन था। आज जो लोग लोगों की बुराई और भलाई की फिक्र नहीं कर रहे वो नबी के मिशन से निकल चुके। कल क्यामत के दिन वो अल्लाह के नबी के आगे जवाब दे होंगे कि हमने अल्लाह के बंदों को रोकने की बजाय सिर्फ अपनी जाती इसलाह की कोशिशें की। हालांकि अल्लाह के नबी के लिए टाइटल क्या है? बशीरों व नज़ीरा। अच्छे काम करोगे तो ग्लैड टाइडर, और अगर बुरे काम करोगे तो वार्नर। आज इसी की जरूरत है ताकि लोगों को गलत काम करते हुए झिझक तो आए कि हम गलत काम करके किधर जा रहे हैं। और फरमा दिए कि बिशारत दे दो इन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह। बस हम कहते हैं ये फजल दे दो हमें, ना हम नजीर बने, ना हम बशीर बने, ना हम दाई बने, और हम कहते हैं बस देखा अल्लाह ने हमें टाइटल दे दिया है ना। तो टाइटल कब मिलते हैं? जब आप उससे पहले कुर्बानियां देते हैं, शहादतों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह के रास्ते की शहादत की गवाहियां देने से पहले पहले करो क्या? हाईलाइट कीजिए, आपके मेरे लिए इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता है, और वो क्या है? वला तुतील काफरीन वल मुनाफिकीन वदाअहुम, और हरगिज न दबो कुफार और मुनाफिकीन से, कोई परवाह ना करो इनकी अजियत रसानी की, और भरोसा करो अल्लाह पर, अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के इस हुक्म पर हम कितना गौर करते हैं कि मत दबो ऐसे लोगों से जो तुम्हारे अकायद को बिगाड़ दें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारी तरफ से इनके ऊपर कोई इद्दत लाजिम नहीं जिसके पूरा होने का तुम मुतालबा करो, लिहाजा इन्हें कुछ माल दे दो और भले तरीके से रुख्सत कर दो। ऐ नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके मेहर तुमने अदा किए, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मलकियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहने जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की, और वो मोमिन औरतें जिन्होंने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया अगर नबी इससे अपना निकाह करना चाहें। ये रियायत खालिसतन आपके लिए, हर दूसरे मोमिनों के लिए नहीं। आपको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवी और लौंडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयद की है। आपको इन हदूद से हमने इसलिए एग्जेम्प्ट कर दिया यानी मुस्तस्ना किया ताकि आपके ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह गफूर रहीम है। आपको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, और जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद वापस बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मजायका नहीं यानी कोई हरज नहीं। इसी तरह ज्यादा मुतवक्के है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा न होंगे, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इन पर वो सब राजी रहेंगे। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं और ना इसकी इजाज़त है कि इनकी जगह और बीवियाँ ले आओ, कौम का हुसन तुम्हें कितना ही अच्छा लगे। अलबत्ता लौंडियों की तुमको इजाज़त है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। यह आपने देखा कि अल्लाह के नबी के लिए कुछ खास चीज़ों का जिक्र था। देखिए, जब कोई बंदा अल्लाह के रास्तों में निकलता है और ख़ास तौर पर नबूवत का मुकाम था, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दूसरों से अलग कर दी जाती हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी पर तहज्जुद फ़र्ज थी, आम उम्मतियों पर ये नफिल है। इसी तरह से आप देखिए कि आम मर्दों को 4 से ज़्यादा शादियों के एक वक्त में इजाज़त नहीं, लेकिन यह हमने देखा कि नबी को इजाज़त मिली। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि वक्त और ज़रूरत के तहत फ़र्क होगा। एक लीडर को जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें मुहैया की जाएंगी, वो फौजियों के लिए नहीं की जाएंगी। फ़र्क होता है जर्नैल और कमांडर का और इसी तरह आम फौजियों का। तो लिहाजा अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ जो दिया, इसके पीछे अल्लाह की हिकमतें मौजूद थी। और जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने आपको चूज़ कर लिया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद कोई निकाह अल्लाह के नबी का नहीं हुआ। इस पे बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोग पढ़ेंगे कि एक एक निकाह के पीछे क्या बड़ी बड़ी हिकमतें थी।